તારીખ 3/9/1998 શ્રી સમયસર કળશ ટીકા શ્લોક નંબર 13 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 111
ધર્મ કે 10 લક્ષણ મેં એક ત્યાગ નામ કા લક્ષણ હૈ सम्यक्त्व पूर्वक होने से उसको उत्तम त्याग कहते हैं। त्याग शब्द सापेक्ष है, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। जीव अन्य पदार्थ का संबंध करता है और मिथ्यात्व अवस्था में हमको मिला, हमको प्राप्त हुआ, ऐसा एक ग्रहण का भाव होता है। पर का प्रवेश कर लेते अपने में, उसको छोड़ देना, अपना भिन्नत्व को अनुभव करके छोड़ देना, मतलब कि भिन्न ज्ञानमयी आत्मा का पर से भिन्न अनुभव करके ऐसा मिथ्या भाव का अभाव कर देना, उसको कहते हैं उत्तम त्याग। पद्मनंदी आचार्य महाराज ने तो उसका वर्णन ही उसी प्रकार से किया है कि श्रुत का अवलंबन लेना वही त्याग है। श्रुत का अवलंबन लेना मैंने सम्यक श्रुत है, उसमें स्वपर पदार्थ की भिन्नता का विधान है, तो अपना भिन्न अनुभव करके फिर जो चीज अपनी है ही नहीं, पर पदार्थ तो अपना है ही नहीं, ऐसा सम्यक ज्ञान वर्तता है, तो जो भी चीज संयोग में है उसका सदुपयोग हो जाए, ऐसा भाव रहा करता है। क्यों कि उस संयोग वाली चीज में अपना मन अपनापन करके ही अपने नुकसान किया है, अपनापन करके उसका ग्रहण करने का भाव रहा है, और जब वो भाव नहीं है तो उस चीज का सन्मार्ग के उद्योत होने में उपयोग हो जाए वही ठीक है, वही उचित है। ऐसा करके मुनि इत्यादि को पुस्तक या पीछे कमंडल आदि कोई धर्म साधन, वो तो अपने आचार्य ने अपने जमाने की बात किया है। वर्तमान में सदग्रंथ सत्शास्त्र उनका प्रचार प्रसार, जिन मंदिर आदि का होना, ये सब में संपत्ति को लगाना, उसको कहते हैं कि त्याग किया। क्या ग्रहण करके त्याग किया कि अपने आत्मा को ग्रहण करके या आत्मा भावना को ग्रहण करके, या तो सीधा स्वरूप का अवलंबन ले लें, उस स्वरूप का ग्रहण है। यहाँ तक नहीं पहुँचे हो तो उसकी भावना में आकर के ग्रहण भाव को, मुमुक्षु को ढीला करना चाहिए, शिथिल करना चाहिए, उसकी पकड़ है उसको शिथिल कर देना चाहिए। ज्ञानी को तो भिन्नत्व हो गया है, इसलिए उनको उत्तम त्याग कहने में आता है। सम्यक दर्शन पूर्वक का वो भाव है, इसलिए उसको उत्तम त्याग कहने में आता है। तो उसमें कर्तापना का त्याग होता है, अपनत्व का त्याग होता है, सुख बुद्धि और आधार बुद्धि का भी त्याग होता है, भोक्ता बुद्धि का भी त्याग होता है और स्वरूप का ग्रहण होता है। इसको कहते हैं उत्तम त्याग। और इस तरह से ज्ञानी चारित्र मोह को भी क्रमशः कम करते 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 संपूर्ण मोह का त्याग कर देते हैं। मुमुक्षु को तो सबसे पहले दर्शन मोह का त्याग करना होता है। बाह्य पदार्थ के त्याग की भूमिका मुमुक्षु की नहीं होती, उनको अपनी शक्ति, पूरी शक्ति दर्शन मोह को त्याग करने में लगानी चाहिए। पर पदार्थ का एकत्व का त्याग को ही सर्वप्रथम भगवान ने त्याग बोला है, श्री जिन ने त्याग कहा है, अध्यास का त्याग को त्याग कहा है, आया ना 569 में। अध्यास कहो, एकत्व कहो, अपनापन कहो, उसका त्याग को ही त्याग कहा है। सर्वप्रथम ऐसा त्याग होना चाहिए, ये इसका त्याग का क्रम है। तो आत्मा में ऐसा एक धर्म है या धर्म प्रकट होता है तो ऐसे ही परिणाम रहते हैं कि मैं किसी पर का स्वामी नहीं हूँ। इसको दूसरी भाषा में अपोहक कहा है, शास्त्र परिभाषा में उसमें अपोहक शब्द बोला है। तो मैंने कुछ ग्रहण किया ही नहीं, मैं तो सदा सर्वदा सर्व से भिन्न ही रहा, तो फिर मैंने ग्रहण ही नहीं किया, त्याग किस बात का मुझे? वो स्वरूप आश्रित बात है। परिणमन में जो एकत्व हुआ था, अध्यास हुआ था, वो छूट गया तो उसको सम्यक प्रकार उत्तम त्याग कहने में आता है। ऐसे त्याग के विषय में संक्षिप्त में व्याख्या है। आत्मानुभूति इति शुद्धनयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिर्यमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मानम् आत्मने निवेश्यसु निष्प्रकम्पम् एकोऽस्ति नित्यम् अवबोधगणः समन्तात्। इस कलश श्लोक का विषय है कि जो आत्मानुभूति है वो शुद्ध नयात्मिक होने से, वो आत्मानुभूति है वही ज्ञानानुभूति है। आत्मानुभूति को ज्ञानानुभूति जानना चाहिए और ऐसा जान करके आत्मा से आत्मा का प्रवेश करना, मैंने आत्मा से आत्मा में निष्प्रकंप, मैंने अचलित रूप से स्थिर होना, कि जो आत्मा समन्तात् मैंने समस्त प्रकार से विज्ञान घन है, ज्ञान घन है, अवबोध का घन है, अवबोध मैंने ज्ञान, ऐसा श्लोक का सामान्य अर्थ है। दो बात उसमें कहना चाहते हैं आचार्य श्री कि एक तो जिसको आत्मानुभूति कही जाती है वो वास्तव में ज्ञानानुभूति है। ज्ञान की अवस्था स्वसंवेदन रूप है। ऐसे ज्ञान के स्वसंवेदन को ही आत्मानुभूति कहने में आते हैं। जबकि निश्चय आत्मा है वो त्रिकाल सामर्थ्य रूप परिणमन रहित है और अनुभव परिणमन में होता है। और परिणमन रहित जो आत्म स्वभाव है, आत्म सामर्थ है, वो शक्ति के पावर के रूप में होने से उसमें कोई वेदन की अवस्था नहीं है, वो तो खुद ही अवस्था रहित है। फिर भी अध्यात्म के प्रकरण में अवलंबन की मुख्यता से, अवलंबन की प्रधानता से आत्मानुभव बोला जाता है, क्योंकि अवलंबन इसका लिया जाता है इसलिए। और बिना अवलंबन लिए प्रकट स्वसंवेदन का आविर्भाव भी नहीं होता। और स्वसंवेदन का आविर्भाव ज्ञान के पर्याय में होता है, वो ज्ञानानुभूति है। इसलिए आत्मानुभूति है वो शुद्ध नहीं द्वारा शुद्धात्म स्वरूप का अवलंबन है और वही ज्ञानानुभूति है, क्योंकि उसी वक्त ज्ञान का स्वसंवेदन आविर्भूत होता है। इसलिए ज्ञानानुभूति कहो या आत्मानुभूति कहो, दोनों एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। विविक्षा अवश्य अलग अलग है, फिर भी बात तो एक ही है। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि त्रिकाली स्वरूप में अनुभूति की पर्याय नहीं, और जो स्वसंवेदन है वो पर्यायात्मक है, वो त्रिकाली नहीं है, वो एक परिणमन है, अवस्था है जिसमें अनुभव होता है, अनुभूति होती है। दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ के अंग होने के बावजूद भी दोनों का जो सुमेल है, कोऑर्डिनेशन है, वो इस प्रकार से है कि जब स्वरूप का अवलंबन लिया जाता है तभी स्वसंवेदन होता है, बिना स्वरूप का अवलंबन स्वसंवेदन होता नहीं। उतना ही नहीं, जो स्वसंवेदन आविर्भूत होता है वो अवलंबन का विषय नहीं बनता, वो वेदन का विषय बनता है। स्वसंवेदन है वो वेदन का विषय है, अवलंबन का नहीं। और जिसका अवलंबन लिया जाता है वहाँ स्वसंवेदन नहीं है, वो सिर्फ अवलंबन का ही विषय रहता है कि जिसके अवलंबन से स्वसंवेदन होता है। ऐसी थोड़ी वो टेक्निकल बात है। तो यथार्थ रूप से अनुभव में ही समझ में आती है, और जिसको अनुभव नहीं होता है उनको वो बात यथार्थ रूप से समझ में नहीं आती। इसलिए कभी बौद्धिक स्तर पे कोई कल्पना करके इसका प्रतिपादन करता है तो वो बात विपरीत हो जाती है। अब राजमल जी इस पर अपने भाव प्रदर्शित करते हैं टीका में। आत्मा सुनिष्प्रकम्पम एकः अस्ति, तीसरा और चौथा पद में से कुछ शब्द लिए हैं। इसमें मैं आत्मा पहला शब्द तीसरे चरण में, सुनिष्प्रकम्पम आखिर का शब्द है, एकः अस्ति वो चौथे चरण में पहले शब्द है। ऐसे अर्थघटन करने में ऐसे शब्द में साथ साथ में रखे हैं। संस्कृत भाषा की वो कठिनता है कि उसमें कोई भी शब्द आगे पीछे रखे जाते हैं, किसके साथ किसको जोड़ना ये अर्थघटन करने वाले के समझ पर आधारित है, इसलिए विभिन्न अर्थ लोग निकालते हैं, कभी कभी ऐसा भी बनते हैं। और काव्य में तो ये छूट छाट सभी भाषाओं में है, उसमें कोई कर्ता कर्म क्रियापद की व्यवस्था का नियम नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। कवि जैसा चाहता है वैसा लिख सकता है, उनको सब छूट छाट है। और संस्कृत में तो पद्य में नहीं गद्य में भी ऐसा ही होता है। तो कहते हैं कि आत्मा अर्थात चेतन द्रव्य अशुद्ध परिणमन रहित सुनिष्प्रकम्पम, प्रकम्प मैंने हलन चलन होना, अस्थिर होना, निष्कंप मैंने स्थिर होना। स्थिरता अस्थिरता उसके साथ शुद्धि अशुद्धि का अविनाभावी संबंध है। अस्थिरता के कारण से अशुद्धि उत्पन्न होती है, स्वरूप स्थिरता के कारण से शुद्धि की उत्पत्ति होती है। तो अध्यात्म का प्रकरण होने से याना अध्यात्म दृष्टिकोण से लिखते हैं, इसलिए आत्मा अशुद्ध परिणमन से रहित शुद्ध होता है। जब अशुद्ध परिणमन से रहित होता है तब शुद्ध होता है, यानी निष्कंप भाव में स्थिर भाव में रहता है तब शुद्ध होता है। कैसा है वो आत्मा? कि नित्यम समन्तात अवबोध घनः, सदाकाल नित्यम मैंने सदाकाल, समन्तात मैंने सर्वांग चारों ओर से, ज्ञान गुण का समूह है, ज्ञान पुंज है। जैसे नमक की डली खारापन से लबालब भरी है, शक्कर जैसे मिठास से लबालब भरी है, वैसे आत्मा ज्ञान से लबालब भरा है। ज्ञान घन है, अवबोध घन है, मैंने ज्ञान घन है, सभी गुण से ऐसा ही भरा हुआ है। आनंद लो तो आनंद का घन है, घन माने सॉलिड पदार्थ, घन माने सॉलिड पदार्थ, वो फिजिक्स में आता है ना, ઘન પ્રવાહી ને વાયુ એક પદાર્થની ત્રણ અવસ્થા હોય છે, જેસે કે પાણી કે પરમાણુ હોય તો બરફ કે અવસ્થા મેં વો ઘન ઘન પદાર્થ મેં ઘન અવસ્થા મેં હૈ ફિર ઉસમે ક્યા હૈ કે વો પરમાણુ બહોત સમીપ રહેતે હૈ ફિર ઉસમે થોડી જગા હોતી હૈ તો વો પ્રવાહિત હો જાતા હૈ ઓર જગા આપસ મેં બઢતી હૈ તો વો વાયુ કા રૂપ ધારણ કરતા હૈ તો ઇસકી ફિઝિકલ પોઝિશન હૈ પાણી કે અનેક પરમાણુ કી ફિઝિકલ પોઝિશન વો હૈ કે બહોત નજદીક રહેતા હૈ તો ઘન હો જાતા હૈ બરફ હો જાતા હૈ આપસ મેં જગા બઢતી હૈ તો પ્રવાહિત હોકર કે પાણી હોતા હૈ ઓર જગા બઢતી હૈ તો વેપોરાઇઝ હોકર કે બાદલ બનતે હૈ યા વરાળ જિસકો બોલતે હૈ વો બન જાતે હૈ આત્મા હો જ્ઞાન કા ઘન હૈ એસા કહેતે હૈ આનંદ કા ઘન હૈ ઉસકો આત્મા કહેતે હૈ ઉતના જ્ઞાન ભરા હૈ ઉતના જ્ઞાન ભરા હૈ આત્મા મેં કે આપ દેખો તો પ્રદેશ પ્રદેશ સે પ્રતિ સમય ઉસકા પ્રવાહ બહાર નિકલી રહા હૈ જો ઘનિષ્ઠ પદાર્થ હૈ ઉસમેં સે જ્ઞાન પ્રવાહિત હોકર કે બહી રહા હૈ હર સમય ઓર અનંત કાલ સે એસા જ્ઞાન કા પ્રવાહ પ્રદેશ પ્રદેશ સે પ્રવાહિત હોતા રહા હૈ ફિર ભી ઉસમેં જો જ્ઞાન હૈ ઉસમેં એક અંશ ભી કમી નહીં હુઈ ઓર એક અંશ ભી કમી હોને વાલી નહીં હૈ એસા જ્ઞાન ઘન હૈ ઓર સર્વાંગ જ્ઞાન ઘન હૈ એક પ્રદેશ મેં જ્ઞાન જ્યાદા હૈ ઓર એક પ્રદેશ મેં જ્ઞાન કમ હૈ એસા ભી સ્વભાવ અપેક્ષા સે નહીં હૈ પર્યાય કી બાત અલગ હૈ સ્વભાવ મેં તો પૂરે ક્ષેત્ર મેં અનંત અનંત જ્ઞાન ભરા હૈ પૂરે ક્ષેત્ર મેં અનંત અનંત આનંદ ભરા હૈ એસા પદાર્થ હૈ એક પ્રદેશ ભી કમ સ્વભાવ વાળા નહીં હૈ ઇસલિયે યહાં એસા લિખા કે સર્વાંગ જ્ઞાન ગુણ કા સમૂહ હૈ જ્ઞાન કા પુંજ સર્વાંગ હૈ જિસકા અવલંબન લેને સે આત્મા આત્મા મેં નિષ્કંપ પ્રવેશ કરતા હૈ એસા કહેતે હૈ એસે આત્મા કા અવલંબન લેને સે આત્મા આત્મા મેં સ્થિર રૂપ સે પ્રવેશ કર લેતા હૈ ઉસી કો હી આત્માનુભૂતિ કહેતે હૈ ઉસી કો હી જ્ઞાનાનુભૂતિ કહેતે હૈ બહોત સી બાતો કા સ્પષ્ટીકરણ હૈ ઇસમે ચૂંકિ સ્વાનુભૂતિ કે કાલ મેં જ્ઞાન પ્રમાણ હો જાતા હૈ ઓર દ્રવ્ય પર્યાય કા ભેદ નહીં રહેતા યુગપદ દ્રવ્ય પર્યાય કા જ્ઞાન હોતા હૈ પ્રમાણ જ્ઞાન કા યહી સ્વરૂપ હૈ કે દ્રવ્ય પર્યાય કા યુગપદ જ્ઞાન હોના એક સાથ જ્ઞાન હોના ક્યોંકિ દ્રવ્ય કા અવલંબન હૈ ઓર પર્યાય કા સંવેદન હૈ ઇસલિયે અનાદિ સે દ્રવ્ય સે અનજાના થા વો બાત નહીં રહી દ્રવ્ય કા ભી જ્ઞાન હો ગયા ઓર પર્યાય કા તો અનાદિ અનંત હોતા હી રહેતા હૈ યુગપદ જ્ઞાન હોને સે ઉસકો પ્રમાણ જ્ઞાન કહેતે હૈ तो किसी को ऐसा होता है कि देखो प्रमाण ज्ञान में ही अनुभव होता है, वहां नए ज्ञान नहीं होता। ये विद्वानों का झगड़ा का विषय है। देखिए, प्रमाण ज्ञान में अनुभव होता है, वहां नए ज्ञान नहीं होता। तो आचार्य श्री ने कहा कि जो आत्मानुभूति है वो तो शुद्ध नयात्मिक है, वो तो शुद्ध नयात्मक है। जिसको शुद्ध नहीं प्रवर्तता है उसको ही आत्मानुभव होता है, क्योंकि शुद्ध नहीं का प्रयोजन आत्मा का शुद्धात्म स्वरूप का अवलंबन लेना, वही शुद्ध नहीं का प्रयोजन है। तो ऐसे प्रयोजन पूर्वक प्रवृत्ति हुए बिना स्वानुभव होता नहीं, और स्वानुभव होता तो प्रमाण हुए बिना रहता नहीं। तो नय की विविक्षा से कहें तो अन स्वानुभव शुद्ध नयात्मक है, प्रमाण की अपेक्षा से कहे तो आत्मा बिना प्रमाण अनुभव गोचर होता नहीं। दोनों बात है, आपको एक अवस्था को विभिन्न दृष्टिकोण से समझने का सम्यक प्रकार से ज्ञान होना चाहिए, उतनी सी बात है। तो उसका भी फैसला है इसमें, यानी बहुत सी बातें हैं। क्या करके आत्मा शुद्ध होता है कि आत्मना आत्मनी निवेश, आत्मना आत्मा द्वारा स्वयं से अपने से, तीसरी विभक्ति है साधन। किस साधन से? अपने ही साधन से। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे साधन की स्वानुभव में अपेक्षा नहीं है, कोई भिन्न साधन की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आत्मा खुद ही साधन शक्ति से संपन्न है, साधन वाली शक्ति खुद में ही है, और वो शक्ति भी बेहद है। कैसी है? बेहद साधन, खुद स्वरूप भूत ही है, इसलिए भिन्न साधन की अपेक्षा अपने कार्य में स्वानुभव में नहीं है। आत्मा से, आत्मना मैंने अब स्वयं से ही, आत्मनी मैंने अपने में ही, कहीं और जाना नहीं है। आत्मा को न शास्त्र में खोजना है, न मंदिर में खोजना है, आत्मा में ही आत्मा है। आत्मा से बाहर को भी आत्मा गया नहीं, छुटा नहीं। तो आत्मा से आत्मा में प्रविष्ट हो करके, निवेश मैंने प्रविष्ट हो करके, वो क्या भाव है? जीव ने अनादि से पर प्रवेश भाव करके अपने स्वसंवेदन को आविर्भूत होने नहीं दिया। ज्ञान वेदन तो ज्ञान में है ही, क्योंकि ज्ञान अन्य का वेदन कर ही नहीं सकता, ज्ञान अन्य का अनुभव कर ही नहीं सकता, और ज्ञान में ज्ञान वेदन हमेशा हमेशा रहा ही होता है, रहता ही है। ज्ञान अपना ज्ञान वेदन का त्याग भी नहीं कर सकता, और दूसरे का वेदन को ग्रहण भी नहीं कर सकता। यह अनादि अनंत स्थिति है। दूसरे के वेदन में अध्यासित वेदन होता है, जैसे कि हमको ठंडा लगा, हमको गर्म लगा, अग्नि स्पर्श से शरीर में जल जाता है। मैं जल गया, मुझे जलने का अनुभव होता है, बढ़तरा बढ़तरा अनुभव, बढ़तरा को क्या बोलते हैं हिंदी में, है जलन, जलन, मुझे दाह हो रहा है, मुझे जलन हो रहा है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा जल सकती नहीं और आत्मा को कोई जला सकते नहीं है। और जलन का अनुभव भी आत्मा नहीं कर सकता, ज्ञान कर सकता है, जलन कैसी होती है इसका ज्ञान कर सकता है, लेकिन जलन का अनुभव नहीं कर सकता। शरीर के परमाणु में जलन होती है उसका ज्ञान होता है, लेकिन वो परमाणु का अपने में अनुभव नहीं होता है, नहीं कर सकता है। फिर भी मिथ्या अध्यास से, मिथ्या मेरे में प्रवेश हुआ, ये जलन का मेरे में प्रवेश हुआ, मैं जलता हूं, मुझे मीठा लगता है, कड़वा लगता है, ये सब पर प्रवेश हुआ। वो पर प्रवेश भाव के कारण से स्वसंवेदन मालूम नहीं पड़ता, होने पर भी मालूम नहीं पड़ता, उसको शास्त्र भाषा में कहते हैं तिरोभूत है, ज्ञान वेदन तिरोभूत हो रहा है। तिरोभूत का मतलब आच्छादित होना, आच्छादित होने से होने पर भी उसका अनुभव मालूम नहीं पड़ता, अनुभूत होने पर भी इसका अनुभव मालूम नहीं पड़ता, ऐसा अनादि से हो रहा है। जब यह अध्यास छूट जाता है, जब पर का प्रवेश भाव का अध्यास छूट जाता है, तब क्या होता है कि तब प्रदेश प्रदेश में पूरे पैर से लेकर के चैतन्य पिंड में, प्रदेश प्रदेश में व्याप व्यापक भाव से ज्ञान का और आनंद का वेदन आविर्भूत होकर के अनुभव में आता है। आविर्भूत होना मैंने तीव्र होकर के, प्रकट होकर के अनुभव गोचर होता है, उसको कहते हैं कि आत्मा ने, आत्मा में प्रवेश किया, आत्मा ने आत्मा में प्रवेश किया। वास्तव में आत्मा तो आत्मा में था ही, लेकिन पर प्रवेश भाव का जो अनुभव था वो छूट गया और मैं अपने आप में अपने को अनुभव कर रहा हूँ, उसको कहते हैं कि आत्मा ने आत्मा में प्रवेश किया। तो ये शुद्धि होने की प्रक्रिया है, क्या है, व्याप्य व्यापक भाव से प्रदेश प्रदेश में यानी अखंड चैतन्य पिंड में अखंड का अनुभव होना, अखंड ज्ञान वेदन का अनुभव होना, ये शुद्धि की प्रक्रिया है। क्योंकि प्रश्न ये उठाया है कि क्या करके आत्मा शुद्ध होता है, तो क्या आत्मा आत्मा में प्रवेश करके शुद्ध होता है। प्रवेश करना माने क्या, कि अखंड का अखंड रीति से अनुभव करना है। बनारसी दास जी का पद है, कर्ता कर्म क्रिया नहीं, क्रिया नहीं भासतु है। सुगानी जी ने अपने पत्र में दो तीन जगह उद्धरण किया है, कर्ता कर्म क्रिया नहीं भासतु है, अखंड रीति धरे हैं, आत्मा है वो अखंड रीति को धारण करता है, तब कर्ता कर्म क्रिया का भेद मालूम नहीं पड़ता है, कौन करता है कौन क्रिया करते है। आत्मा ने किया, आत्मा में किया, आत्मा से किया, वो सब भेद छूट जाता है। क्या करके आत्मा शुद्ध होता है कि अपने से अपने में ही प्रविष्ट हो करके आत्मा शुद्ध होता है, यानी अपना व्यापक रूप से अनुभव करने से आत्मा शुद्ध होता है, यानी पर प्रवेश भाव को छोड़ करके आत्मा शुद्ध होता है। भावार्थ ऐसा है कि आत्मानुभव पर द्रव्य के सहाय से रहित है, अपने से लिया ने, यहां से अर्थ निकाला कि आत्मानुभव पर द्रव्य की सहाय से रहित है, अतः अपने में ही अपने से आत्मा शुद्ध होता है। कोई पर द्रव्य की सहाय नहीं, अमुक प्रकार की अनुकूलता हो जाए तो मुझे स्वानुभव होगा, ये गलत अभिप्राय है। प्रतिकूलता हटे, अनुकूलता होवे तो अनुभव होवे, ऐसी बात नहीं है। महाविदेह क्षेत्र होवे तो धर्म होवे, वो बात भी नहीं है। सत सरल है, सुगम है और सर्वत्र उसकी प्राप्ति, प्राप्ति माने अनुभव हो सकती है। न पर क्षेत्र का, न पर द्रव्य का, न पर भाव का, विकल्प का, आत्मा का विकल्प चले, रटन चले तो अनुभव होवे, सो भी बात नहीं है। अरे पूर्व पर्याय का भी उत्तर पर्याय के साथ कर्ता कर्म संबंध है, नहीं है। पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कर्म का नियम होने के बावजूद भी ऐसी बात है, कर्म का नियम अवश्य है फिर भी कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ऐसी बात है। क्योंकि कर्ता कर्म संबंध एक ही पर्याय में होता है, षटकारक एक ही पर्याय में होता है। यहां पर कोई प्रश्न करता है कि यहाँ इस प्रसंग में तो ऐसा कहा कि आत्मानुभव करने पर आत्मा शुद्ध होता है, और कहीं ऐसा कहा कि ज्ञान गुण मात्र अनुभव करने पर आत्मा शुद्ध होता है, तो इसमें विशेषता क्या है? क्या प्रश्न उठाया कि आत्मा का अनुभव करो तो आत्मा शुद्ध हो जाएगा? कोई कहते हैं कि ज्ञान से ज्ञान का वेदन करो तो आत्मा शुद्ध हो जाएगा। बात दो तरह की होगी, एक त्रिकाली आश्रित बात हुई, एक ज्ञान वेदन के पर्याय आश्रित बात हुई। बात दो प्रकार की होगी आत्मा के शुद्धि के विषय में, मार्ग दो हो गया। क्या बात है, मार्ग दो हो ही नहीं सकता, और कथन में तो दो मार्ग है ऐसी बात आती है। कोई कहते हैं आत्मा का अवलंबन ले लो, कोई कहते हैं कि ज्ञान का अनुभव करो, हमको क्या करना, ऐसा प्रश्न यहां उठता हो सकता है। तो इसमें विशेषता क्या है, इसमें क्या फर्क है, क्या कहना चाहते हैं, उत्तर ऐसा है कि विशेषता तो कुछ भी नहीं, एक ही बात अलग अलग ढंग से कहने में आई है, दो बात है ही नहीं, एक ही बात है। इसलिए कोई विशेषता यानी कोई फर्क, कोई अंतर है ही नहीं, दोनों बात में कोई अंतर ही नहीं है, यही कहते हैं। या शुद्ध नयात्मिका आत्मानुभूति इति किल इयम एव ज्ञानानुभूति इति बुद्ध्वा, बुद्ध्वा मैंने ऐसा जान करके, कैसा जान करके, कि जो आत्मानुभूति अर्थात आत्मद्रव्य का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद है वही ज्ञानानुभूति, ऐसा कहना चाहते हैं। आत्मा का जो प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद है वही ज्ञान का ज्ञान से अनुभव है, कोई दूसरी बात है ही नहीं, वो कहना चाहते हैं, तो उसको अनुभव कहते हैं। आत्मानुभूति किसको कहते हैं कि आत्मद्रव्य का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद, आत्मद्रव्य का मैंने त्रिकाली स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद के मैं ऐसा हूं। कैसी है अनुभूति? अनुभूति पर्याय है और आत्मा त्रिकाली है, पर्याय प्रत्यक्ष रूप से उसका आस्वादन करता है, जैसा आत्मा है वैसा आस्वादन करता है, उसी को कहते हैं अनुभूति। अपनापन स्थापित करके, कैसे अपनापन स्थापित करके, या मैं हूं ऐसा अवलंबन लेकर के, या मैं हूं ऐसा स्वाश्रय करके, जो वेदन होता है उसको आत्मानुभूति कहने में आया है। आत्मा में अपनापन यानी मैंपन, मैंपन मैंने अपनापन, वैसे भाव से अभेदता को साध लिया। किसको साध लिया? अभेदता को, क्योंकि अपना स्वरूप है, उससे भेद क्यों रखे। अभेद रूप से अनुभव किया, अभेद भाव से अनुभव किया, तो वो अनुभव को आत्मानुभूति बोलने में आता है। आत्मा की मुख्यता से वो बात कही, आत्मा में अपनापन की मुख्यता से, आत्मा के अवलंबन की मुख्यता से वो बात कही कि वो आत्मानुभव है। किसका अनुभव है? कि आत्मा का अनुभव है। पर अनुभव में ऐसा ही आता है कि मुझे मेरा स्वरूप का अनुभव हुआ। क्या अनुभव में आया? कि मुझे मेरा स्वरूप का अनुभव हुआ। अनुभव, अनुभव ज्ञान विशेष है। यहाँ तो प्रश्न वो है कि अनुभूति को आत्मानुभूति क्यों कहते हैं? जो पिन पॉइंट बात है वो उतनी है कि ये इस अनुभव को आत्मानुभूति क्यों कहते हैं, कि एकाकार रूप से अभेद भाव से मैं ऐसा आत्मा हूं ऐसा अनुभव रहता है, ऐसा अनुभव होता है, इसलिए उसको कहते हैं कि वो आत्मानुभूति है। हैं? हैं? बद्धा गुणों नु अभेद रूप ते आत्मा, अनंत गुणों नु अभेद एक रूप ते आत्मा, बद्धा गुणों ही भेद थी गया, एनु एक रूप, अभेद एक रूप ते आत्मा, અને એનો પોતા રૂપે પોતાપણે અભેદ અનુભવ તે આત્માનો અનુભવ, આમ કહેવું છે। અને એમ કહેવામાં કાંઈ દોષ નથી, એમ કહેવામાં કાંઈ દોષ નથી. પણ જે દ્રવગુણ પર્યાયનું જેને સમજ છે એને અહીંયા પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ અનુભવ તો પર્યાયમાં છે, ત્રિકાળીમાં અનુભવ છે નહીં, પછી આત્માનો અનુભવ એવી વાત શું કરવા? આમ છે, જે વિવાદનો વિષય ક્યાંથી ઉઠે છે કે ત્રિકાળીમાં અનુભવ નથી છતાં આત્માનો અનુભવ એવું શું કરવા કહેવું પડે છે? જ્ઞાનનો અનુભવ કહીએ તો વ્યાજબી છે કે જ્ઞાન જ્ઞાનને વેદે છે, જ્ઞાન જ્ઞાનને વેદે છે, માટે જ્ઞાનને જ્ઞાનનો અનુભવ જ્ઞાનાનુભૂતિ કયો, એમાં તો કાંઈ વિવાદનો વિષય નથી. પણ જે આત્માનુભૂતિ છે એ જ જ્ઞાનાનુભૂતિ છે એમાં અહીં તો પ્રતિપાદન કરે છે આચાર્ય, એમાં શું કેવું છે? તો કે પર પ્રવેશ ભાવ છોડીને આત્માએ આત્માથી આત્માએ આત્મા વડે, આત્માથી એટલે આત્મા વડે આત્મામાં પોતાનો અનુભવ કર્યો છે, માટે એને અમે આત્માનુભવ પણ કહીએ છીએ. ભલે ત્રિકાળીમાં વેદન ન હોય પણ ત્યાં આત્માનું જ્ઞાન થયું કે નહીં, અનુભવ જ્ઞાન થયું કે નહીં કે મારો આત્મા આવો છે, એમ અનુભવમાં આવ્યું કે ન આવ્યું? તો કે આવ્યું, બસ. તો એને આત્માનુભવ કહેવામાં આવે. અને એ પ્રેક્ટિકલ સાઈડ છે આ વિષયની, આ પ્રેક્ટિકલ સાઈડ છે. કેવી રીતે? કે એક માણસ ચોરી કરે છે તો આપણે એમ કહીએ છીએ ભાઈ એની પર્યાયમાં ચોરીનો ભાવ છે, આપણે તો એને ચોરની નજરે જોઈએ છે. મારા ઘરમાંથી મારા મકાનમાં દાખલ થઈને હું નહોતો ત્યારે આ માણસ ઘરમાં આવીને ચીજ ઉઠાવતો હતો અને મને જોઈને ભાગવાની કોશિશ કરી, એટલે એટલા માટે એ માણસ ચોર છે. આપણે શું કહીએ છીએ? એ માણસ ચોર છે એમ કહીએ છીએ. કેમ કે અમે પ્રત્યક્ષ જોયો એને ચોરી કરતા. તો અહીંયા તમે એમ કહો છો કે એની પર્યાયમાં ચોરીનો ભાવ છે, એ માણસ ચોર નથી, હે એમ કહો છો? અરે ભાઈ ચોર છે ચોર, એમ કહો છો. આમાં સેન્સ શું લેવી છે? કે દ્રવ્ય છે એ પર્યાયમાં પાંગરે છે, ત્રિકાળીના ભેદને અમે નથી જોતા અત્યારે કે ત્રિકાળી પર્યાયમાં આવતો નથી. ત્રિકાળી પર્યાયમાં આવતો નથી એટલે ક્ષણિક રૂપે થતો નથી. ત્રિકાળી ત્રિકાળી રહીએ છે એ વાત એટલી જ સાચી છે 100%. છતાં પણ એ પર્યાય રૂપે દ્રવ્ય જ પરિણમ્યું છે, બીજું કોઈ પરિણમ્યું નથી. જે તે દ્રવ્ય છે એ પોતે જ પોતાની પર્યાય રૂપે પરિણમ્યું છે, બીજું કોઈ પરિણમ્યું નથી. એટલે દ્રવ્ય જ પાંગરું છે પર્યાય રૂપે એમ કહે છે. અને એ વાત પણ એટલી 100% સાચી છે. એવી વસ્તુની વિચિત્રતા છે, દ્રવ્ય પરિણામી પણ છે અને દ્રવ્ય અપરિણામી પણ છે, અને બે બે એક વખતે છે. એક જ વખતે અપરિણામી છે અને તે જ વખતે તે દ્રવ્ય પરિણામી પણ છે. આમ વાત છે, અવલંબન અપરિણામીનું છે. અવલંબન શેનું છે? અપરિણામીનું છે, એમ વાત છે. અને એટલા માટે કથનમાં એમ કહેવાય છે કે આત્માનો અનુભવ થાય છે, આત્માનો સ્વાદ આવે છે, કેમ કે ગુણો પરિણમે છે. જ્યારે ગુણો પરિણમે છે, દ્રવ્ય પરિણમે છે, ત્યારે એમાંથી કાંઈક ઘટ્યો તો કે નહીં? ગુણ ગુણ રૂપે, દ્રવ્ય દ્રવ્ય રૂપે ઇન્ટેક્ટ રહીને પરિણમે છે. બુદ્ધિમાં પકડવું કઠણ પડે એવી વાત છે, છતાં અનુભવમાં તો બરાબર સમજાય એવી વાત છે. બુદ્ધિમાં કદાચ સમજાય, કદાચ ન પણ સમજાય, કેમ કે વાત થોડી વિચિત્ર પણ છે અને પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. જે અપરિણામી હોય એ પરિણામી કેવી રીતે હોય ને, પરિણામી હોય તો એ અપરિણામી કેવી રીતે રહે છે. વસ્તુનું સ્વરૂપ એવું જ છે, વસ્તુનું સ્વરૂપ એવું જ છે. ખરી વાત તો એ છે કે તમે વસ્તુને જોવા માગો છો, તો અમારો પ્રશ્ન છે કે તમે ક્યાં ઉભા રહીને જોવા માગો છો, એ કયો પહેલા. નહીતર શું થશે કે તમને વસ્તુનો નિર્ણય નહીં થાય. પરિણામી ને અપરિણામી બે એક સાથે નિર્ણય કરવો કેવી રીતે કે વસ્તુ કેવી છે. વસ્તુ અપરિણામી પણ છે અને વસ્તુ પરિણામી પણ છે, બંને એક સાથે છે, તો વસ્તુ કેવી છે એનો અમારે નિર્ણય કરવો કેવી રીતે. બુદ્ધિવાળાને આ મોટી મુશ્કેલી ઊભી થાય છે. ત્યારે જ્ઞાની પૂછે છે કે તારે વસ્તુનો નિર્ણય કરવો છે ને, ક્યાં ઊભો રહીને કરવો છે મને કહે. પરિણામમાં ઊભો રહીને, પરિણામના અવલંબને કે દ્રવ્યના અવલંબને કરવો છે, કોના અવલંબને કરવો છે એ કહે. પછી તને આ વસ્તુનો નિર્ણય થશે, નહીં તને નહીં થાય. પદાર્થ નિર્ણય સુધી કૃપાળુદેવ 254માં લઈ ગયા ને, અને ત્યાં વાત પછી એમણે બહુ ચર્ચી નહીં પદાર્થ નિર્ણયની. પદાર્થનું ઓળખાણ થાય છે અથવા અસ્તિત્વ ગ્રહણ થાય છે, નિશ્ચય થાય છે કે પદાર્થ આવો છે, પણ એક મોટું પ્રકરણ છે. પદાર્થ નિર્ણય એક બહુ મોટું પ્રકરણ છે. નિર્ભાન દર્શનમાં આપણે 28 પાના ભર્યા છે એક પ્રકરણ ઉપર, અને બહુ મહત્વપૂર્ણ પ્રકરણ છે, બહુ જ મહત્વપૂર્ણ પ્રકરણ છે. મહત્વપૂર્ણ એટલા માટે છે કે લક્ષ્ય વિના, ઓળખાણ વિના, લક્ષ્ય વિના પુરુષાર્થનું ચૈતન્ય વીર્યનું સ્ફૂર્ણા જોર આવે નહીં કોઈ દિવસ. સ્વરૂપ મહિમા ન આવે, સ્વરૂપનું જોર ન આવે, સ્વરૂપની રુચિ ન થાય, એટલું બધું એનું મહત્વ છે. લક્ષ્યના કારણથી જે ભીંસ આવે છે, સ્વરૂપ લક્ષ્યમાં આવ્યા પછી લક્ષ્યના કારણથી જે ભીંસ સ્વરૂપ ઉપર આવે છે કે હું આવો છું, એમાંથી આવરણ તૂટી જાય છે નીચેનું. સ્વરૂપ ઉપર જે અનાદિનું આવરણ છે, એ આવરણ અહીંયા તૂટે છે. આ એનું સાયન્સ છે, વિજ્ઞાન છે, ભલે ઊંડું છે, ઊંડું વિજ્ઞાન છે, પણ છે આવું વિજ્ઞાન. જેમ કોઈ પાતાળ ફોડે ત્યારે પાણી નીકળે અંદરથી, એમ જે આવરણ અંદર તૂટે એટલે જ્ઞાન ને આનંદનો પ્રવાહ છે એ નિરાવરણ થઈને બહાર આવે, એને મોક્ષ માર્ગની દશા કહેવામાં આવી છે. તો કે એ કેવી રીતે બહાર આવે છે, તો કે લક્ષ્યના કારણથી જે જોર આવે છે ને, ભીંસ આવે છે, એનાથી આવે છે. સમયસારની 15મી ગાથામાં જરા ઊંડો વિષય છે એટલે જલ્દી બહાર નહીં નીકળાય એમાં. સમયસારની 15મી ગાથામાં આચાર્યશ્રીએ સ્વાનુભવની વિધિનો વિષય ચર્ચ્યો છે. જ્ઞાન સામાન્યનો તિરોભાવ કરવામાં આવે અને જ્ઞાન વિશેષ જ્ઞાન સામાન્યનો આવિર્ભાવ કરવામાં આવે અને જ્ઞાન વિશેષનો તિરોભાવ કરવામાં આવે તો આત્મા અથવા જ્ઞાન પ્રગટપણે અનુભવ ગોચર થાય છે. અર્થાત જ્યાં સુધી જ્ઞાન સામાન્યનો તિરોભાવ હતો કે જે જ્ઞાન વિશેષના આવિર્ભાવને લઈને હતો ત્યાં સુધી તો આત્મા અનુભવમાં નહોતો આવતો અથવા જ્ઞાન પ્રગટપણે સ્વસંવેદન રૂપે અનુભવમાં નહોતો આવતો. ત્યારે એટલી જ વાત સમજીને એટલે કે લક્ષણા વિષયનું કોઓર્ડિનેશન ન કરવામાં આવે અને માત્ર વિધિનો વિષય સમજીને કોઈ અંદરમાં પ્રયાસ કરે કે હું જ્ઞાન વિશેષને ગૌણ કરું જ્ઞાન વિશેષને ગૌણ કરું જ્ઞાન વિશેષને ગૌણ કરું અને એકલા જ્ઞાન સામાન્યનો હું આવિર્ભાવ કરું તો એ લક્ષણા કારણ વિના એવું બની શકતું નથી. એ સ્વરૂપલક્ષ સિવાય બને જ નહીં, પ્રયોગ જ ન થાય એમ કહેવું છે. હવે ત્યાં સ્વરૂપલક્ષનો વિષય ચર્ચતા નથી, ચર્ચા કરી નથી. તો આખું શાસ્ત્ર વાંચીને કોઓર્ડિનેશન કરી શકે એનું કામ છે. લક્ષ લક્ષણનો વિષય ઠેઠ છેલ્લે ચર્ચો પરિશિષ્ટમાં. અહીંયા જો ખાલી વિધિનો વિષય વાંચીને અંદરમાં પ્રયત્ન કરવા જાય તો એ પ્રયત્ન સફળ થાય નહીં, કરી શકે નહીં, અનુભવ થાય નહીં એમ વાત છે. એટલે અહીંયા કે છે કે ક્યાંક આપ એમ કહો છો કે આત્માનો અનુભવ કરીએ તો શુદ્ધિ થાય, ક્યાંક આમ કહો છો કે જ્ઞાન માત્રપણે જ્ઞાનનું વેદન કરો તો જ્ઞાનનું વેદન કરે તો શુદ્ધિ થાય. તો કે આમાં છે શું? પણ બે વાત છે તો કે નહીં, વાત તો એક જ છે. આત્માનું અવલંબન અને જ્ઞાનનું વેદન એક સાથે જ હોય છે, જ્ઞાનના વેદન સાથે આત્માનું અવલંબન એક સાથે જ હોય, બે જુદા જુદી રીતે હોય નહીં. એક પર્યાયમાં ડબલ કામ થવું જ જોઈએ તો જ કામ સરખું પૂરું થાય, નહીંતર ન થાય એમ કે છે. લક્ષનું અને અવલંબનનું અને વેદનનું બે પર્યાય, અવલંબન પણ લે અને વેદન પણ કરે, એ બે કામ કરે ત્યારે જ કામ પૂરતું થાય, પર્યાપ્ત રૂપે કામ થાય, નહીંતર ન થાય. અને એ પ્રેક્ટિકલ સાઈડથી આપણે કરીએ છીએ, કેવી રીતે કરીએ છીએ, પરિણામ છે ને એ ચાલ છે. આપણે ચાલીએ ત્યારે શું વાત હોય છે કે આપણે કોઈ લક્ષ્યથી ચાલીએ છીએ, લક્ષ વિના કોઈ દિવસ ચાલતા નથી. અહીં બેઠા છીએ આપણે તો જેવા ઊભા થશું એટલે પહેલું લક્ષ તો નક્કી થઈ જશે કે ઘરે જવું છે. ત્યારે કોઈને કાંઈ શાકભાજી લેવા હોય કે નાસ્તો પાણી લેવા હોય તો કોઈ સ્ટોરમાં કે બજારમાં જવાનું હોય તો એ લક્ષ થઈ જશે. કોઈને પોતાને સીધું અહીંથી દુકાને ઓફિસે જવું હોય, કોઈ જરૂરી કામ હોય તો એ લક્ષ થશે. પણ પહેલાં લક્ષ થશે નિશ્ચિત થયા પછી, લક્ષ નિશ્ચિત થયા પછી તમે ચાલવા માંડો છો. જરૂર નથી કે તમારે યાદ કરવું પડે કે મારે અહીંયા જવું છે, મારે અહીંયા જવું, મારે અહીંયા જવું, મારે અહીંયા જવું છે. એ તમે અવલંબન લઈ લીધું કે આ ઠેકાણે જવું છે, પછી તમારો ઉપયોગ ચાલવામાં છે. પણ તમે લક્ષ્મીના ચાલતા નથી, ડબલ કામ કરો છો. તમારી પર્યાયમાં લક્ષ પણ રહે છે, લક્ષને યોગ્ય પણ પરિણમન છે અને તમે બરાબર સાવધાનીથી ચાલો છો. ચાલતી વખતે તમારે સાવધાની રાખવી જ પડે કે તમે કોઈ ખાડામાં ન પડો, તમે કોઈ ઠેસ વાગીને પડી ન જાઓ, તમે કોઈ ટ્રાફિકમાં અથડાવ નહીં. આ બધા અનેક પ્રકારનાની સાવધાની ચાલતી વખતે તમારે રાખવી જ જોઈએ અને એ જ ચાલવાની ખરી વિધિ છે. વિધિપૂર્વક જો તમે ન ચાલો તો પણ ચાલી શકો નહીં, અને લક્ષ્યપૂર્વક વગર ન ચાલો તો પણ તમે ક્યાં જાવ એનું ઠેકાણું રહે નહીં. તો એક સાથે બે કામ થાય છે કે નથી થતા ચાલતી વખતે? એમ આમાં પણ એક સાથે બે કામ છે એમ સમજાવવું છે. આશય છે કે લક્ષ્યમાં આત્મા પણ હોવો જોઈએ, માટે એને આત્માની અનુભૂતિ કરીએ છીએ, અને જ્ઞાનવેદન પણ હોવું જોઈએ, માટે એને જ્ઞાનાનુભૂતિ પણ કહીએ છીએ, અને બંને એક સાથે જ હોવું જોઈએ, અને તો જ કામ બરાબર પ્રેક્ટિકલી પરફેક્ટ થાય છે, નહીંતર પ્રેક્ટિકલી પરફેક્ટ કામ થાય નહીં એમ સમજાવવા માગે છે શ્લોકની અંદર. અહીં સુધી રાખીએ, વિશેષ લઈશું.